नारायण 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 नारायण। प्रश्न आया है कि सुषुप्ति के साक्षी होने की बात तो समझ में आती है, किंतु जागृत स्वप्नावस्था में तो इनके साथ तादात्म्य हो जाने से साक्षी तो कैसे रहता है। देखो, सुषुप्ति में साक्षीपन रहता है, ये एक कहने से समझ में आती है, उसमें एक दुख नहीं रहता, इस वास्ते सुख होता है। तो वो सुख का साक्षी होता है, अभाव का साक्षी मन, कुछ भी पता नहीं था। तो अभाव का साक्षी है, ऐसे ही स्वप्न और जागृत में भाव का साक्षी है। वस्तुओं के अभाव का जैसे साक्षी है, ऐसे जागृत में स्वप्न में संसार के भाव का साक्षी है। संसार के साथ में तादात्म्य हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, केवल मान लेता है। वहां तादात्म्य होने से ही बात है नहीं। तादात्म्य अगर होता, तादात्म्य अध्यास कह सकते हैं, तादात्म्य अध्यास, तादात्म्य होता तो उसके स्वरूप ही हो जाता, तो फिर संबंध विच्छेद नहीं होता। अपना जो स्वरूप है उसका साक्षात्कार होने पर फिर उससे व्युत्थान नहीं होता। तो सुषुप्ति में जो सुख का अनुभव है वो संसार के संबंध विच्छेद का अनुभव है, परमात्म तत्व का अनुभव नहीं है। क्यों? दुखालय शाश्वतम है, असज्जड दुख रूप है प्रकृति, प्रकृति का कार्य। तो वो दुख मिटना है, वो सुख वहां सुख है। संसारिक सुख होता है। एक बात और याद आ गई, बीच में कहता हूं, किसी विषय का जो सुख लेते हैं ना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, पांच विषय है, एक है मान, एक है बढ़ाई, एक है आलसी प्रमाद, ये इतने सुख है। इसके सिवा एक अभिमान जन्य सुख है। ये सुख याद करो, सुख क्या है? पांच विषयों का सुख है, संबंध होने से विषयेन्द्रिय संयोग आदि जत दग्रे अमृत परिणाम विषय में हुआ, तो विषयों का सुख हुआ। एक आलस्य और प्रमाद का सुख होता है, आलस्य पड़े हैं, कुछ नहीं करना पड़े, ये होता है, ये तामस सुख है। प्रमाद का जो निरर्थक खेल में, निरर्थक तमाशा देखने में, बेड़ी देखने में एक सुख होता है, तामसी सुख है, ये अधोगत संधि तामसा। तो ये सुख है, तो वो सुख जो है तामसी सुख, एक अभिमान जन्य सुख होता है। जैसे लखपति है, करोड़पति है, और मेरे घाटा लग गया, और घाटा लगने में बहुत नुकसान हो गया, बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए, तो गरीब जो है आदमी, पीढ़ियों से ही गरीबी चलती है, उस गरीब की अपेक्षा वो देवाला निकला है, घाटा लग गया है, फजीती हो गई है, उसके पास धन ज्यादा है। गरीबी पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, उनकी अपेक्षा धन ज्यादा है उनके पास, तो फिर दुख किस बात का है? अभिमान जन्य सुख था, मैं करोड़पति हूं, मैं लखपति हूं, हमारी इज्जत है, हमारी प्रतिष्ठा है, ये अभिमान जन्य सुख है। वो अभिमान अब नहीं रहा, फजीती हो गई, बड़ा दुखी है। पूछ लेगा आप कौन हो, कैसे हैं, तो उससे जल जाए। मैं ऐसे थोड़े ही पूछा जाता था, सामने आकर तू कौन है ऐसा पूछते मेरे से, वध बात सीधी बात पूछी, बिचार वध की दुख दिया नहीं, कोई तुम्हारा कुछ लिया नहीं, पूछ गई तू कौन है भाई, ये पूछते तू कौन है, ये मेरे को सामने आकर पूछे, क्या हम थे राज, क्या हो गए, उस जरूरत। तो ये अभिमान जन्य सुख होगा है, ऐसे प्रमाद का सुख है, खेल तमाशा आदि वीडियो है, खेल का, तो ये प्रमाद का सुख है। और पड़े रहना और कुछ काम नहीं करना तो सुख लेना, ये आलसी का सुख है। प्रमाद एक क्रिया रूप होते अक्रिय रूप होते, इससे सुख मिलता है। तो ये सब सुख त्याज्य है। इन सुखों में भी एक मार्मिक बात कहने की मन में आई मेरे, इन सुखों में क्या सुख किस बात का है कि जो ज्यादा दुख है उस ज्यादा दुख से संबंध विच्छेद होने का सुख है, वहां मिलने कुछ नहीं है। मैंने बहुत बार दृष्टांत दिया है, कल्पना करो कि हमारी एक घड़ी की मन में आई कि एक घड़ी में तो अपने साथ में टाइम देख ले बड़ा अच्छा है, तो मन में आई तो बहुत ज्यादा आ गई, ज्यादा आ गई तो क्या करें अब कैसे, और किसी कारण से किसी ने दे दी घड़ी, सब ये घड़ी रखो आप अपने पास, तो देने से एक सुख हुआ है। तो वो देने से सुख हुआ जो घड़ी से सुख हुआ ये बात बिल्कुल नहीं है, घड़ी के मिलने से सुख हुआ ये नहीं है। घड़ी का जो हमारा भीतर से संबंध था कि घड़ी मिले घड़ी मिले घड़ी मिले, ये संबंध है घड़ी का, और घड़ी मिलते ही भीतर की निकल गई, वहां वो निकल गई सुख हो गया। अगर घड़ी से सुख हुआ तो घड़ी के रहते हुए तो घोड़ा नहीं चाहिए, क्यों घड़ी से सुख हुआ है। तो जितना संसार सुख होता है वो ज्यादा आफत से छूटने का सुख होता है, वो परमात्मा तत्व का स्वरूप का सुख नहीं होता है। ज्यादा आफत है जैसे सिर पर बोझा लिया हुआ है और खोपड़ी तप गई, कंधे पर ले लिया, हवा लग गई, आराम आ गया, अब एक रत्ती भर दुख तो बाहर तो कम नहीं हुआ, थोड़ा सा बदल दिया इस वजह से सुख हुआ। ऐसे थोड़ा सा संबंध विच्छेद हो गया सुखी हो गया, सब मौज हो गई, सब मात्र संसार की मौज राजसी तामसी है। सात्विक सुख भी आत्मबुद्धि प्रसाद जम प्रसाद, परमात्म विषय की जो बुद्धि होती है उसमें एक प्रसन्नता होती है, त्याग से भी एक प्रसन्नता होती है, संबंध विच्छेद से भी प्रसन्नता होती है, एक उस तत्व के मिलने से प्रसन्नता होती है। तो मिलने की प्रसन्नता है वो नष्ट नहीं होती, और जो दूसरी प्रश्न है वे तो संयोग वियोग संयोग वियोग संयोग होता रहता है, पर गीता कहती है तम विद्या दुख संयोग वियोगम, दुख के संयोग का स्पर्श ही नहीं होता वो सुख है, संयोग का ही वियोग स्पर्श ही नहीं होता, तो वो सुख परमात्म तत्व का है। तो वो सुख होने पर उसे अभियोग नहीं हुआ, क्योंकि वो सदा है, पहले से ही सुख रूप आत्मा है ही, संसार में झंझट में लगे रहने से उसका अनुभव नहीं होता। तो जो सुषुप्ति में कहते हो कि सुषुप्ति काल में साक्षी होने की एक है, तो साक्षी होने का नहीं है, सुषुप्ति काल में संसार के भूलने का सुख, भूल गए आज झंझट मिट गई वही सुख है और कुछ नहीं। और साक्षी बना कहो कि उसमें सुख है तो वह अभाव का साक्षी है, तो जागृत और स्वप्न में भाव का साक्षी, पदार्थ की सत्ता है ना उसका साक्षी होगी, और तो घुल मिल थोड़ा ही गया, घुल मिला तो मान लिया, तो भाव का साक्षी अभाव का साक्षी फर्क क्या पड़ा, उसमें तो फर्क पड़ा नहीं, भाव नहीं पदार्थों का साक्षी है। तो इससे जितने सुख होते हैं भाव और अभाव से ही होते हैं, और ये सब अनित्य है, परमात्म तत्व का अनुभव वो नित्य है, वो है ज्यों का त्यों रहेगा, जागृत में स्वप्न में सुषुप्ति में मूर्छा में समाधि में कोई फर्क नहीं पड़ता, बेहोशी आ जाए तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, समाधि लग जाए निर्विकल्प एकदम तो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। प्रकाशन च प्रवृत्ति च मोहमेव च पांडव न देष्टि संप्रवृत्ता, प्रकाश प्रवृत्ति मोह के साथ में आग आ जाए तो कोई इसमें राग नहीं, चली जाए तो कोई वैसी इच्छा नहीं, निवृत्ता कांक्षा थी उनकी इच्छा नहीं। तो समाधि हो जाए न हो जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता, एकाग्रता हो जाए नहीं हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, वो है गीता का योग। और चित्त की वृत्ति का निरोध होना चाहिए, वो पातंजल कृष्ण का योग है। तो वो तो वृत्तियों के निरोध होने से होता है, या निरुद्ध हो चाहे चंचल हो, क्षिप्त विक्षिप्त और एकाग्र, मूड क्षिप्त विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध, पांच अवस्था होती है। एक मूड अवस्था होती है अंतःकरण में जिन्हें कुछ भी नहीं समझता, एक चंचलता बहुत होती है तो वो भी कुछ नहीं समझता, क्षिप्त वृत्ति है, एक विक्षिप्त वृत्ति होती है, कभी थोड़ी ठहरती कभी चलती है, वो विक्षिप्त वृत्ति है। तो विक्षिप्त वृत्ति वाला अधिकारी होगा, मूड और क्षिप्त वृत्ति वाले लोग का अधिकारी नहीं होगा। और फिर वो चित्त लग जाएगा तो एकाग्रता होगा, एकाग्रता के बाद में निरुद्ध होता है, वो निरोध होने का सुख है, वहां वृत्तियों का निरोध होगा। तो निरोध हुआ तो क्या, वृत्तियां संसार की तरफ गई नहीं, रुक गई उधर से, तो वो सुख हुआ है, एक आफत मिटी है, और कुछ मिला नहीं। तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थान, वह बाद में दृष्टा की स्वरूप में स्थिति होती है, वो स्वरूप में स्थिति होती है वृत्तियों के निरोध के बाद। गीता ने योग ही उसी को कहा, निरोध को योग नहीं कहा है, निरोध को भी नाम योग के कई अर्थ आए हैं गीता में, अपने दर्पण में लिखे हैं, परंतु वो योग नहीं है। योग गीता का है, तम विद्या दुख से योग वियोगम और समत्वम योग विशेष समता। तो सम क्या है, परमात्मा निर्दोष है, समम ब्रह्म, उस साम्यावस्था में अंतःकरण की स्थिति हो गई। अब क्या हुआ, ब्रह्म में स्थित है तो उनका लक्षण नहीं है ये सांग साम्य स्थित मन, मन साम्य अवस्था में हुआ तो वो निर्दोष अंग समम ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोष और सम है, अंतःकरण में दोष नहीं रहा, विषमता नहीं रही, तस्मात निर्मित। तो उस वो ये पहचान है, खुद के लक्षण नहीं है। उस पहचान से शेर जी ने कहा था, बड़ नीचे बैठे सत्संग हो रहा था, तो कहा कि सामने पहाड़ दिखता है, उस पर घाम आ गया, तो वो आतप आया है, उससे हम पहचानते हैं कि सूर्योदय हो गया। सूर्य दिखता नहीं, पर दिखता नहीं पर उदय होगा, न उदय होता तो वहां घाम कैसे आता, वहां आतप कैसे आता, अरे वो आतप दिखता है। इस तरह से अंतःकरण में एक शांति एक आनंद का अनुभव रहता है हरदम निरंतर, उसमें न राग होता है न द्वेष होता है न हर्ष होता है न शोक होता है, एक स्वतः सिद्ध शांति रहती है। वो जो निर्दोष अंग समम ब्रह्म वो है ये सांग साम्य स्थितंग मन साम्य सिद्ध हुआ, इससे सिद्ध होता है कि तस्मात ब्रह्मणि स्थित इस वास्तव में ब्रह्म में स्थित है। तो ब्रह्म में स्थित हो अंतःकरण में एक शांति होती है। तो ये यूं याद आ गया कि दूसरा संबंध विच्छेद का सुख है, उसकी प्राप्ति का सुख नहीं है, संबंध विच्छेद है। तो विच्छेद होता है सुख होता है, तो जितने सुख होते हैं सब विच्छेद से ही होते हैं, शब्द हो स्पर्श हो रूप हो रस हो गंध हो मान हो बड़ाई हो आलस्य हो प्रमाद हो समाधि हो, जितना होता है ये सब संबंध संबंध विच्छेद से होता है। तो दुखालय क्या है, संसार है, इसका संबंध दुखदायी दुखदायी है, सुखदायी वहम होता है, इसमें सुख का है। तो वो वृत्ति है कहते उसमें तादात्म्य हो जाता है, तादात्म्य तो होता है वो मानव तादात्म्य तो मिटता ही नहीं, और मिटता तो पीछे होता ही नहीं। ये ज्ञातवा न पुनर्मोहम एवं यास्त्री पांडव, फिर मोह नहीं होता, वो एक सुख है अलग है। तो दुखों का अभाव होता है और दुखों का भी अभाव नहीं होता, उसमें एक मार्ग की बात और है। किसी विषय से सुख हुआ तो जैसे भूख लगी और भोजन किया तो भोजन करते ही एक सुख होता है, अनुकूल भोजन मिलता है, भूख है प्यासे को ठंडा अच्छा जल मिलता है, उससे एक सुख होता है। तो वो सुख क्या है? वो भोजन करने की जो वृत्ति थी कि भूख लगी भोजन करूं करूं, वो भोजन करते करते थकावट हो गया, थक गया, हम खा नहीं सकता, तो थकावट का नाम सुख है। इधर संबंध विच्छेद सुख हुआ थकावट का, अब थक गया खा सकते नहीं, अब सामर्थ्य का सुख है, अब सामर्थ्य नहीं, किसी भोग को भोगने की सामर्थ्य नहीं रही, अब सुखी हो गए, सुखी दूर हो गए। आप बताओगी एक तरह का वो परिश्रम मिट गया, थकावट हो गई, ये सुख संसार सुख ही है। परंतु इसमें भी देखे तो उससे वृत्ति हटी है थोड़ी देर के लिए, उसे सुख होता है। तो थकावट हटी हटना हो क्या कि थकावट ये भोग सकते नहीं, भोगने की शक्ति नष्ट हो गई, इस वजह से सुख दिखता है और सुख सुख नहीं हुआ, तो वो भी भाव का सुख है। कहते हैं कुछ न करने वाले साधक की वृत्ति निराधार रहने से कठिनाई प्रतीत होती है, क्योंकि सदा से कुछ न कुछ पकड़ा तो अभ्यास पड़ा हुआ, पकड़ने का अभ्यास पड़ा हुआ है, तो वो एकाग्रता में कठिनता क्यों पड़ती है कि साइकिल चलाने वाले जानते हैं कि जोर से साइकिल चलाई जा सकती है, परंतु एकदम खड़ी साइकिल नहीं रहती, चलती रहती है उसको जोर ही नहीं आता, पर सफा खड़ी रहे तो उसमें जोर आता है। ज्यादा अभ्यास वाला साइकिल को खड़ी रखकर खड़ा रह सकता है, हर एक आदमी चलाने वाला खड़ा नहीं रह सकता, चल सकता है जोर से चल सकता है। इसी तरह वृत्तियां है, खड़ी रहते ही वहां क्या वह नींद आ जाएगी अथवा गिर जाएगा, तो क्या तो संसार का चिंतन होगा, नींद नींद आ जाएगी, वहां वृत्ति टिक नहीं सकती। इसमें कठिनता क्या आती है कि वृत्ति जन्य सुख है वो नहीं मिलता है, वृत्ति एकाग्र होती नहीं, ठहरती नहीं, का तो संसार चिंतन होगा तो नींद आ जाएगी। ये दो ही खास है, समाधि में कई विघ्न माने हैं, उसमें ये दो विघ्न मुख्य है, लय और विक्षेप, लीन हो जाएगी अथवा विक्षेप संचलता हो जाएगी। अब वो विक्षेप मिटने से सुख मानते हैं, वो मिटने से सुख नहीं होता है, भी एकदम ठीक हो जाए। कार्य व्यग्रता होती तो बड़ी झंझट होती है, छूट गए बाद तो थक गए माना, छूटने से कुछ नहीं, थकावट है उसका एक सुख है, ऐसे जो संबंध विच्छेद है उसका सुख है, वास्तविक सुख नहीं है। एकांत में बड़े सुख मिलता है, बड़ा आनंद मिलता है, एकांत में आफत मिटी है, इसलिए सुख कुछ नहीं मिला गया उसे नहीं। अब उस सुख भोगता रहेगा तो वो गुणातीत नहीं होगा, वो सुख भी भोगेगा एकांत का और त्याग का, तो गुणातीत नहीं हो सकता, वो आत्मबुद्धि प्रसाद जम सात्विक सुख है। तो सुख संगे न बदनाती ज्ञान संगे न सत्व गुण भी ज्ञान और सुख की आसक्ति से बांधता है। तो वह एकांत बैठे बड़ा आराम है, बड़ा ठीक है, हम भी बैठते हैं जाते हैं तो जंगल में चला जाता था तो बड़ी ही आराम मिलती, कोई जरूरत नहीं बैठे मन से। तो ये सुख क्या है? ये एक परमात्मा विषय बुद्धि तो होती है साधक के लिए, और के तो भाव ही होता है, तो वो भी कोई तृप्ति हो जाए उनसे संबंध से सुख होता वो नहीं है, संबंध विच्छेद का सुख है। तो इस वजह से कई मुक्ति मानते हैं दुखों के अत्यंत अभाव को, जैसे नहीं आएगी 21 प्रकार के दुखों के ध्वंस को मानते हैं। पातंजलि जैसे योग है वो कहता है कि ये आदि भौतिक आदि देव आध्यात्मिक दुखों से रहित हो जाना, बस रहित हो गया ये सुख हो गया, पर वो स्वरूप का सुख जो होता है वो प्रेम में होता, भगवान के साथ नहीं है एकता है वहां सुख होता, उसमें एक विलक्षण सुख होता है, वो सुख परमात्मा जैसे है। तो दूसरी में वृत्ति छूटने पकड़ने का अभ्यास पड़ा, ये ठीक बात कहते हैं, वृत्ति का त्याग भी नहीं होता, तो उसमें थोड़ी वृत्ति करो, वास्तव में वृत्ति उत्पन्न और नष्ट होने वाली है, ध्यान देना, वो साधक क्या करे ये प्रश्न पूछा है, तो वृत्ति उत्पन्न होने और नष्ट होने वाली है, तो उत्पन्न और नष्ट होने वाली अपना स्वरूप नहीं है। वृत्ति बने कितने चंचल, तो हमारा चंचल क्या हुआ, वृत्ति एकाग्र हो गई तो क्या, चंचल हो गई तो क्या, तो वृत्तियां है। अरे वृत्तियों को कोई अभाव करके सुख है तो एक बात बता मार्मिक, वृत्ति जीवन मुक्ति भी की भी स्थिर हो जाए, जीवन मुक्ति भी है, अगर स्थिर हो जाए तो प्रकाशन से प्रवृत्तन से मोह में वो जो पांडव न दृष्टि संप्रवृत्ता नहीं नवृत्ता नहीं का अंश थी, ये कहना भी नहीं बनेगा। प्रकाश प्रवृत्ति मोह का आना जाना होता है, अगर उसका आना जाना नहीं होता है तो इसमें क्या कि आने जाने में न राग होता न द्वेष होता है। अब आने जाने में ये मिट जाए तो सुख होता है, हो जाए तो सुख होता है, तो न मिटने में न होने में ये अनित्य है। तो इसको क्या किया जाए, इसमें करना यही है कि जो वृत्ति भले ही शांत हो भले ही घोर हो, घोर वृत्ति होती है शांत वृत्ति होती है, ये वृत्तियां होती रहे होती रहे न होती रहे, अपना संबंध नहीं है। ये एक निश्चित बात है कि अपना हम तो निरंतर रहते हैं, वृत्ति निरंतर कभी नहीं हुई किसी नहीं होगी, समाधि के समय होगा और समाधि का काल भी क्षण परिणाम है, वो भी परिणाम होता है, वो भी स्थिर नहीं रहता, तभी तो समाधि जागृत होती है। जैसे नींद पूरी हो जाती जाग जाता है, ऐसे समाधि का काल समाप्त होता है वित्थान हो जाता है, तो वह नहीं कोई पूरा आनंद नहीं है, एकाग्रता का आनंद होता है, तो संसार छूटने का ही आनंद हुआ है। तो उसमें क्या करे कि वृत्तियों के होते हुए भी तमाशा देखे, खेल है वृत्तियों होती है हर जाती है, इनसे अपना कोई संबंध नहीं है, ऐसे उनमें अनुभव करके अपना कोई संबंध वृत्ति घाव घोर वृत्ति हुई, शांत वृत्ति हुई, विकसित वृत्ति हुई, जो वृत्ति हुई, वृत्ति होती मिटती आती जाती है, आगमा पाई नित्या शांत तीक्षा सु। तो तीक्षा क्या है, गुण में राग द्वेष न करे, अरुष रोग न करे, अमृतत्व आय कंडो से मुक्ति हो जाएगी, इसी उपाय ये है। तो वृत्ति की त्याग करने के लिए ना त्याग करना है ना पकड़ना है, किंतु उनके होने को देखना है। कोई भी सुख हो कैसी भी वृत्ति हो उसका आरंभ होता है अंत होता है, वो अपने कोई संबंध नहीं, सभी इस दृष्टि से एक ही रकम के हैं। सात्विक राजस तामस उत्पन्न और नष्ट होते सही होता है, वियोग होता है आते हो जाते, आगमा भाई ना अनित्या, वो अनित्य वो असत है, और अपना आप सत है, अब का होना पर सत है, तो होना पर क्या है कि है उसमें क्रिया नहीं है, पदार्थ नहीं है, भक्ति नहीं है, वस्तु नहीं है, अवस्था नहीं है, कोई घटना नहीं है, कोई परिस्थिति नहीं है, सबका भाव है स्वतः सिद्ध स्वाभाविक। ये जो संसार दिखता है सत रूप से, ये सत्ता है वो दो तरह की होती है, एक उत्पन्न होने के बाद सत्ता होती है, एक स्वतः सिद्ध सत्ता है। जैसे बालक पैदा हुआ तो पैदा हुआ एक क्रिया हुई, पैदा होने के बाद की उस सत्ता ये क्रिया है, बालक है ये मानते हैं ना, तो ये उत्पन्न होने के बाद सत्ता है, और परमात्म सत्ता स्वतः सिद्ध सत्ता है, उत्पन्न सत्ता नहीं है। दर्पण में सत्ता दो तरह की, इसका भरा में किया है थोड़ा सा, तो ये उत्पन्न होने वाली सत्ता है संसार की जितनी है वो, इसमें स्वतः सत्ता नहीं है, और स्वरूप की सत्ता स्वतः सिद्ध है, ये उत्पन्न होने वाले दीन होने वाली नहीं है, ये बदलने वाली नहीं है, ये है जो की इतनी है सदा एक रस है। तो वृत्ति का त्याग भी नहीं होता, त्याग नहीं करना है किन्तु उपराम होना है, समय समय ऊपर में बुद्धिया दृढ़ उपराम हो जाए, त्याग करने से त्यागी का अभिमान, त्याग का अभिमान हुआ त्यागी होगा, त्याग में त्यागी रहेगा, व्यक्तित्व नहीं टूटेगा, इस वास्ते उपराम हो गया, इससे मतलब उन्हें है तो बस प्रकाश अपना दृष्टि संप्रदाय ज्ञान निवृत्ताने कांक्षा थी। तो साधु को चाहिए कि इनकी परवाह नहीं करें, ना एकाग्रता की, ना कोई चंचलता की, ना कोई बढ़िया ना घटिया है। क्या है वो घटिया क्या है न प्रतिष्ठित प्रेम प्राप्त प्राप्त न वो किम भद्रम किम अभद्रम हुआ वस्तु नौकी है अद्वेश वस्तु नौकी है तो वस्तु कोई है ही नहीं है क्यों भद्रम और क्यों अभद्रम एकादश माया क्या बढ़िया क्या घटिया है वस्तु है ही नहीं उसमें क्या घटिया क्या बढ़िया एक ही मानने का सब तो वृत्ति है। ये देखो शुद्ध जीवन मुक्त महात्मा है उसकी चित्त की वृत्ति एक समान रहती नहीं है। ये तो सदा ही ऐसी चंचल है ही इसका मार्ग नहीं है संबंध विच्छेद होता और कुछ नहीं। ये बात है निषिद्ध वृत्तियां पहले छूट जाती है साधन अवस्था में ही निषिद्ध का तो त्याग हो ही जाता है तो निषिद्ध कोई नहीं होता परंतु वही वृत्ति नहीं रहती ऐसा बात नहीं है। ये बात है वो चाहे तो सभी रोक सकता है सभी रग रग लगा सकता है वृत्ति के ऊपर अधिकार हो जाता है। ये बात एक और है पर उसे वृत्तियां न होती हो तो खाना पीना चलना बैठना कैसे होगा वृत्ति की वजह क्रिया ही कैसे होगी। तो ये होती रहे ये विभाग अलग है गुण कर्म विभाग है वो तत्व वित्तु महाभाव गुण कर्म गुण और कर्म पदार्थ और क्रिया ये विभाग है प्रकृति का और प्रकृति और स्वरूप है वो ना गुण है ना क्रिया है इंद्रियाणी इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते प्रकृतेषु कर्माणि। बड़ा विशेष भगवान ने निषेध किया कि नान्यं गुणेभ्यः कर्तारम् गुणों के सिवाय कोई करता है ही नहीं हुआ नहीं होगा नहीं हो सकता नहीं कोई कर्ता गुण ही जो होते हैं प्रकृति करता है इंद्रियाणि ही करता है गुण ही करता प्रकृति क्रियमाना नहीं गुण ही प्रकृति गुणों के द्वारा क्रियाएं होती है कोई क्रिया विभाग और ये पदार्थ व्यक्ति वस्तु अवस्था ये सब प्रकृति के हैं। तो ये विराग ही अलग है विभाग ही और स्वरूप का विभाग ही अलग है इनसे अलग है। तो इन वृत्तियों की उपेक्षा करो उदासीन हो जाओ उपराम हो जाओ विरोध भी मत करो विरोध करो तो संबंध राग करो तो संबंध बढ़िया मानो तो संबंध घटिया मानो तो संबंध उपेक्षा करो जय राम जी।
जैसे आपने दो उपाय बताया एक तो जैसे चित्त की जो वृत्ति है एक तो विक्षेप हुए एक लय हुए तो विक्षेप एकाग्र हुए भी टेम में तो समझो आप आग में या जागृति रहे कि भाई ये जो अपने संबंध नहीं या उत्पन्न होना
लय हो जाए लय बड़ो दोष है लय वालो लय वाला बड़ा दोष है वो बताया नहीं सालक चलती रहे साइकिल चलती रहेगी खड़ी अग गिर जाएगी तो एकाग्र करते ही नींद आ जाएगी
तो ऐसा समझ ले
हाँ
लेकिन लय के समय आदमी उपाय क्या करे साथ
ही उपाय यही है कि पहले से याद रखे लय होने पर उसमें उपाय नहीं होगा लय हो गया तो लय क्या है कि लय क्यों होता है तो इस लय दोष दूर करने के लिए सात्विक काम है जैसे गाना बजाना है ना भगवान की लीला गाओ भगवान के गुण गाओ इसमें लगाओ तो वो चंचलता भी स्थिरता कर देती है गाड़ी भगवत का चिंतन करो जप करो कीर्तन करो पीला गाओ सुनो ये करो तो इनसे करते करते शक्ति आ जाएगी आप में तो वृत्तियों शक्ति आ जाएगी त्याग की वास्तव में तो त्याग से संबंध होगा त्यागात शांति अनंतरम शांति में त्याग से मिलती है। तो सुषुप्ति का दोष है कुछ ज्यादा दोष है चंचलता का दोष ही अपेक्षा सुषुप्ति का दोष ज्यादा है मन ये दूर करने में कठिनता पड़ती है। पहले से ही सावधान रहो हरेक काम में लगे रहो इस बात गीत शास्त्र में आता है कि तमोगुण को रजोगुण से जीतो रजोगुण से सतोगुण से जीतो तो रजोगुण कौन सा कि रजोगुण दो तरह का होता है एक रजोगुण परमात्मा की सन्मुख में होता है एक संसार के सन्मुख होता है। ये गाना बजाना भी रागनियों में समझिए संसार की तब है और इसमें भगवान के चरित्रों में मन लग जाए नाम कीर्तन कर रहे हैं जैसे दोपहर में हो रहा था तो ज्ञान नाम कीर्तन कर रहे हैं तो भगवान के सन्मुख है, तो ये सन्मुख होने वाला राजस्व है, ये तमोगुण को खींचने वाला है, और वो भी रस लेने वाला राजस्व है, तमोगुण ले जाएगा। ये जैसे क्रोध बीज की चीज है, चाहे जो विषय संघर्ष संघास बन गए, कामा कामा क्रोध हो भी जाए, क्रोधात्मक समूह अब समूह तमोगुण में आ गया, बीच में क्रोध आता है, ऐसे बीच का है रजोगुण, तो ये रजोगुण तमोगुण होता है वो पतन करने वाला होगा, और ये गुणातीत की तरफ भगवान की तरफ ला जाने वाला है, वो कल्याण करने वाला है। इसी बात को लेकर भागवत में एकादश स्कंद में जहाँ गुणों का वर्णन है, वहाँ एक तामस गुण है, एक राजस है, एक सात्विक है, एक गुणातीत है, निर्गुण है। मैंने बने थे सात्विक वास, वन में सात्विक वास है, अजा मध्या मानस है, तामस वास है, शहर आदि के राजस वास है, निर्गुण मन मंदिर है, भगवान के मंदिर में वास है, वो निर्गुण है। ऐसे भोजन तामस राजस सात्विक होता है, निर्गुण मन निवेदित हम भगवान के अर्पण कर दिया तो निर्गुण हो गया, तो निर्गुण कैसे हो गया वो, कि निर्गुण की तरफ चलेगा, अब भगवान के सन्मुख हो गया तो सन्मुख हो जीव हो जब ही जन्म कोटि अग्ना से ही तब ही वो होने से अब गुणों के बस में नहीं होगा। इस वास्ते भक्त सदा ही वृक्ष में होता है, भगवान की तरफ वृत्तियां रहती है, उस समय में गुण कुछ नहीं आते बिचारे, सब भाग जाते। तो अगर नींद को जीतना हो तो नाम जप करो, कीर्तन करो, पद गाओ, लीला का चिंतन करो, भगवान की लीला का चिंतन करो, भक्तों के चरित्रों को पढ़ो, चिंतन करो, ये उपाय सुषुप्ति को मिटाने के लिए, सुषुप्ति में लीन ज्यादा हो जाए तो ये काम करो, कीर्तन करो, पद गाओ भगवान।
निवेदन करने ये तात्पर्य था कि वृत्ति के साथ में अपना संबंध नहीं है तो फिर वो जो दोष लय वाला दोष विशेष है, राजस की अपेक्षा तामस है, तो जब अपने संबंध ही नहीं है तो फिर वो उसमें
संबंध माना हुआ है ना, आयुष क्या तादात्म्य, तो तादात्म्य कर लिया उसके साथ,
नहीं माने उसके लिए,
न माने उसके लिए तो आ जाता शिवा, नहीं आ जाता शिवा, नींद आ गई तो मौज, नहीं खुद की तो मौज, अपने क्या मतलब उसे, नींद आई तो वृत्ति में आई है, सोई में थोड़ी आई है, ये वृत्तियां आए तो आती रहती है। इस वास्ते दृष्टांत दिया कि प्रकाश प्रवृत्ति मोह गुणातीत के लक्षणों में आता है, तो उसमें वृत्तियां बदलती है, और वो अपने स्वरूप में जित रहता बदलती रहे बदलती रहे, उपेक्षा कर रही थी बेपरवाह। अब कहते परमात्मा मेरे में है, इसका अर्थ इतने सूक्ष्म है कि आत्मा में भी व्यापक है, यही अर्थ है या और कुछ है, आत्मा में व्यापक मानो तो कोई अर्थ नहीं है, पर व्यापी व्यापक भाव नहीं है वहां, वो आत्मा उसके स्वरूप होने से, या पहले भक्त अपनी दृष्टि से परमात्मा संसार में व्याप्त है, जीवों में व्याप्त है, आत्मा में भी व्याप्त है, ऐसा मानो तो कोई हल नहीं, मगर आत्मा में व्यापी व्यापक भाव नहीं होता, वहां घर एक हो जाती है, वहां दूर नहीं रहता, तो परमात्मा बिल्कुल हमारे है, हम उसके हैं, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे है, ऐसा और दृढ़ता हो जाएगी तो भगवान की कृपा से सब शांत हो जाएगी, आपकी भगवान की कृपा से। नारायण
नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन परम सद्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदानुसार 5 मई 1990 को प्रातः करीब 8:30 बजे गीता भवन नंबर 1 ऋषिकेश में हुआ। राम।